रात के 10 बज रहे थे। ईशान अपने घर पर ध्वनि के साथ मूवी देख रहा था। ध्वनि ईशान की गोद में सिर रखकर लेटी थी। टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम थी। उन दोनों का ध्यान मूवी देखने से ज्यादा बात करने पर था। मुझे लगा नहीं था वो इतने अच्छे से संभाल लेगी। तुमने उसे देखा नहीं? आई विश तुम भी वहां होते। जब वो मीटिंग रूम में आई थी, उसने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था और पता नहीं कौन सी अजीब सी बीमारी का बहाना बनाकर उसने ये सब किया था। ध्वनि ने शिवी के बारे में बताया। तुमने बेचारी को बेवजह फंसा दिया। अरे कुछ भी बोल देती यार, तुमने तो उसके पूरी फिजिकल फीचर्स को ही चेंज कर दिया। मुझे ऐसा करना पड़ा। अगले दिन सुबह ऑफिस आते टाइम आर्या ने उसे ऑफिस के बाहर देख लिया था और उसका पीछा भी कर रहा था। थैंक गॉड उसे किसी का कॉल आया और वो बात करते हुए ऑफिस से आगे निकल गई, वरना दूसरे दिन ही हमारा भाड़ा फूट जाता। आगे क्या सोचा है? ईशान ने पूछा। तुम दोनों का कब तक झूठ बोलने का इरादा है? कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा कि उसके ऑफिस में जो शिवनंदिनी अय्यर काम कर रही है वही शिवी है। उसकी बात सुनकर ध्वनि उठकर बैठ गई। मैंने भी इस बारे में सोचा था, उसका मूड अच्छा होगा तब मैं उसे सब सच बता दूंगी। और उससे पहले फिर कभी शिवी इत्तेफाक से आर्या के सामने आ गई तो क्या होगा? ईशान ने गंभीर होकर पूछा। इत्तेफाक बार बार नहीं होते हैं ईशान, उस दिन भी शिवी उसके सामने कोइंसिडेंटली आ गई थी। आगे से वो भी एक्स्ट्रा केयर करेगी तो ये नहीं होगा। एंड डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, उसका मूड अच्छा होगा उस दिन सब बता दूंगी। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या, ये तुम्हारे आर्या सिंह ओबरॉय का मूड 24 घंटे सड़ा हुआ क्यों रहता है? उसकी बात सुनकर ध्वनि हंसी और जवाब देते हुए कहा, गलती उसकी भी नहीं है, उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने आज से पहले उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन तुम्हें बता दूँ, उसका बाप दुनिया का सबसे अय्याश इंसान होगा। उसके पापा ने 3 शादियाँ की हैं और 4थी करने की तैयारी में है। क्या सच में? ईशान को ये सब सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। मैगजीन्स और मीडिया के सामने उसकी फैमिली काफ़ी हैप्पी नज़र आती है। मुझे लगा वो एक हैप्पी जॉइंट फैमिली में रहता है, और आज तो कुछ अलग ही पता चल रहा है। हाँ, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। लाइमलाइट की चमक के पीछे का दर्द किसी को नज़र नहीं आता। पता है, अब उसके पापा जिससे शादी करने वाले हैं वो तो आर्या से भी उम्र में छोटी है। यही वजह है कि उसने गुस्से में घर छोड़ दिया। ओह, तब तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों है, ईशान ने अफसोस जताया। अभी भी उसके दुख भरी दास्तान खत्म नहीं हुई है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसका किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया। पता है, अगर वो नहीं मरती तो आज आर्या इस दुनिया में नहीं होता। ध्वनि के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसका मूड सही करने के लिए ईशान ने उसे गले लगाया और सहलाकर कहा, आई होप उसकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए। उसकी होप तो उसे खुद को नहीं है, ध्वनि ने जवाब दिया। चलो मूवी देखते हैं, हमने सारा टाइम बातों में ही जाया कर दिया। ईशान ने उसकी बात पर हामी भरी। मूवी देखते हुए भी उसका ध्यान आर्या की तरफ था। आर्या और शिवी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी है। आर्या के पापा ने किसी और से शादी कर ली, तो वहीं शिवी की मॉम ने भी उसके डैड के साथ वो सब होने के बाद किसी और के साथ अपनी लाइफ बिताने का डिसीजन लिया। इन सब का उस पर भी बहुत बुरा असर हुआ। आर्या जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं शिवी अपने पापा से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी आज उसके साथ नहीं है। ईशान के मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। वहीं ध्वनि इन सब से बेखबर उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। शिवी का हालचाल लेने के लिए आर्या उसके घर आया था। उसे अचानक अपने घर पर सामने देखकर शिवी को हैरानी हो रही थी, साथ ही वो हड़बड़ा गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवी ने आर्या की तरफ अजीब नजरों से देखा। ये तुम्हारा फ्रेंड नहीं है क्या? कहीं ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? उसके रिएक्शन को देखकर नील ने पूछा। इसका छोड़ो, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो तो मुझे उससे ज़्यादा परेशानी होती है। जैसा हो वैसा बनकर रहो ना बिग ब्रदर, अब मुझे मेरे नए दोस्त से बात करने दो, शिवी ने जवाब दिया और आर्या का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाने लगी। नील आगे आया और उन दोनों को नोकते हुए कहा, जो भी बात होगी वो मेरे सामने होगी, कहीं ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, शिवी से पहले आर्या ने जवाब दिया। तो फिर यहाँ बैठकर बात करने में क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, सब मिलकर साथ में बात करते हैं। नील ने जबरदस्ती शिवी और आर्या को वहीं पर बैठा दिया। नितारा उसके बर्ताव को देखकर उसे घूर कर देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये नील को क्या हो गया है, ये इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? शिवी कोई बच्ची तो है नहीं? उसे वहां से ले जाने के लिए नितारा नील के पास आकर बोली, चलो बेबी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इन दोनों को भी थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत होगी। नहीं, हम बाद में बात करते हैं, अभी घर पर गेस्ट आया है, जाओ तुम जाकर उसके लिए कॉफी लेकर आओ। नील वहां से हटने को तैयार नहीं था, मजबूरन आर्या को उसके सामने की शिवी से बात करनी पड़ी। एक्चुअली मैंने कल जल्दबाजी में तुमसे तुम्हारा नंबर नहीं लिया, तुम्हें चोट लगी थी और मुझे टेंशन हो रही थी, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे पूछ लूं, तुम ठीक हो ना? आर्या ने शिवी के घर आने से पहले जो भी लाइन्स याद की थी वो सारी एक सांस में बोल दी। ये रोबोट की तरह बात क्यों कर रहा है? नील ने बड़बड़ा कर कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शिवी ने जवाब दिया। रात को दर्द तो नहीं हुआ? और तुमने मेडिसिन तो टाइम से ले ली थी ना? आर्या ने पूछा। उसकी बात सुनकर शिवी खांसने लगी। कहीं मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गई, सब मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? उसने बड़बड़ा कर कहा, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इसके घर वाले इसकी केयर नहीं करते? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, पूरी रात इसके पास बैठा रहा, दर्द के मारे बेचारी पूरी रात सो भी नहीं पाई। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसे गाड़ी से उड़ा दिया। नील कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा था। अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, शिवी ने चिल्ला कर कहा। पता नहीं कौन बेवकूफ़ था जिसे ठीक से एक एक्सीडेंट भी करना नहीं आता। इसे तो एक ज़ोरदार टक्कर लगनी चाहिए थी ताकि इसकी मेमोरी लॉस। शिवी और नितारा उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देख रही थी तो नील ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो मुंह बनाते हुए उठा और अंदर चला गया। नितारा भी उसके साथ थी। उसके वहां से जाते ही शिवी अपनी जगह से उठी और जाकर आर्या के पास बैठ गई। उसने दबी आवाज में कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कब से मेरी फिक्र सताने लगी? याद है ना पिछली बार हमारे बीच कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी और मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात भी की थी? इससे पहले कि सबको सच का पता चले कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। शिवी आर्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाने लगी। आर्या ने उसका हाथ झटका और कहा, अजीब लड़की हो, घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन पेश आता है? चाय पानी पूछना तो दूर की बात है, जिस काम के लिए आया हूँ वो भी नहीं बता रही। मैं ठीक हूँ बाबा, तुम बेवजह परेशान हो रहे थे, एक बार कॉल करके पूछ लेते। शिवी उससे ऐसे बात कर रही थी मानो वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। मैंने भी यही सोचा था लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। अरे है तो सही तुम्हारे पास मेरा नंबर, शिवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
मेरे पास तुम्हारा नंबर कैसे होगा? तुमने मुझे दिया थोड़ी ना था, आर्य ने हैरानी से पूछा। हे भगवान, अभी तो मेरी सारी पोल खुल जाती और मैं इसे बता देती कि मेरे रेज्यूमे में मेरा नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब उसने अभी तक उसे खोल कर तक नहीं देखा, शिवी ने बड़बड़ा कर कहा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर एटलीस्ट अपना नंबर तो दे दो ताकि मुझे कोई काम हो तो मुझे इस तरह तुम्हारे घर तो ना आना पड़े, आर्य ने सामान्य तरीके से कहा। नील उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया था, उसने उन दोनों की बात सुन ली। उसने शिवी से कहा, हाँ तुम्हें इसे अपने नंबर दे देने चाहिए, ये काफ़ी हैंडसम है और इसकी आंखें सच में ब्यूटीफुल हैं। वैसे तुम करते क्या हो? कुछ नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर था, आर्य के जवाब देने से पहले शिवी जल्दी से बोल गई। वो नहीं चाहती थी कि नील के सामने आर्य अपनी कंपनी का नाम ले। देखने में तो तुमसे बड़ा लग रहा है, फिर जूनियर कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, मुझे क्या, हो सकता है ये अपने एग्जाम क्लियर ना कर पाया हो और इस तरह स्टडीज में पिछड़ गया हो। बिल्कुल नहीं, आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आर्य ने हल्के गुस्से में कहा। हाँ ये बहुत ब्रिलियंट है, किसी वजह से इसकी स्टडीज रह गई थी। अब तुम इससे सवाल जवाब करना बंद करोगे? शिवी अपनी के बातों के जाल में फंस रही थी। हाँ ठीक है, पर तुम इसे अपने नंबर तो दे दो, बेचारा कब से मांग रहा है, नील ने कहा। आर्य ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। मेरे नंबर, वो कल एक्सीडेंट में मेरा फ़ोन टूट गया था, मैंने दूसरे फ़ोन में अपना सिम कार्ड डालकर देखा पर वो भी वर्क नहीं कर रहा, लगता है सब कुछ नया लेना पड़ेगा, नंबर ना देने के लिए शिवी ने बहाना बनाया। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तभी मैं सोचूं सुबह तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों आ रहा था, नील ने कहा। कोई बात नहीं, कभी और सही, गेट वेल सून, आर्य ने जवाब में इतना ही कहा और उन्हें बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही शिवी ने राहत की सांस ली। वहीं नील ने कहा, सच बताओ तुम उसे अपने नंबर देना नहीं चाहती थी ना, इसीलिए तुमने बहाना बनाया? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मेरा फ़ोन सच में टूट गया है, शिवी ने जवाब दिया। झूठी लड़की, कहकर नील अपने कमरे में जाने लगा। शिवी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, ओवर एक्टिंग करने वाला लड़का। शिवी भी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर पहले आर्या आया था तो वो उसे देखकर काफ़ी घबरा गई थी। मुझे उसे यहाँ तक लाना ही नहीं चाहिए था, देखो तो सही घर आ गया, पर उसकी भी क्या गलती है, बेचारा मेरा हालचाल लेने ही तो आया था और मैंने उसे ठीक से बात तक नहीं की। शिवी सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह शिवी तैयार हो चुकी थी। उसने आर्या से छुपने के लिए जो भी सामान खरीदा था वो अपने बैग में डाल दिया। वहीं नील और नितारा भी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार थे। तीनों साथ में नाश्ता कर रहे थे तभी घर की डोर बेल बजी। मैं देख कर आती हूँ, शिवी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसके घर के बाहर एक कुरियर बॉय था। मिस शिवी वॉटसन, आपके लिए एक पार्सल है, कुरियर बॉय ने उसे पार्सल थमाया और साइन करने के लिए रजिस्टर आगे कर दिया। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, शिवी ने हैरानी से कहा, शायद किसी का गिफ्ट हो, हैव ए गुड डे, कुरियर बॉय ने मुस्कुरा कर कहा और वहां से चला गया। शिवी उसे अंदर लेकर आई। उसने नील और नितारा से भी इस बारे में पूछा लेकिन दोनों ने ही उसके लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया था। शिवी ने उस पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें एक मोबाइल था जो कि आर्या ने सॉरी कार्ड के साथ भेजा था।